नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
We have been able to achieve that in the first.
हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
They are all designed in India now.
वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।